जहां भगवान कालचक्र के विषय में बता रहे हैं। इससे पहले भगवान ने सृष्टि चक्र के विषय में बताया कि मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे होती है, और वो सृष्टि चक्र हमने समझा, मनुष्यों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अन्न से। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञों से। यज्ञ हमारे निर्धारित कर्मों के द्वारा हम करते हैं, और उन निर्धारित कर्मों के विषय में वेदों में बताया गया है, जो कि शब्द ब्रह्म है, जिसकी उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से, भगवान से। आज मैं जब ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने देखा मेरे कमरे में कॉकरोच घूम रहा था, तो मुझे ये ध्यान में आया कि आप देखिए कि किसी के घर में, कितने घरों में हम देखते हैं कॉकरोच घूमते रहते हैं। तो एक घर का चक्र क्या होता है? ये काल चक्र, इससे पहले सृष्टि चक्र, गृहस्थी चक्र। कि एक घर में आप देखो कॉकरोच छिपकली से डरता है ना? छिपकली ढूंढती रहती कॉकरोच का, तो कॉकरोच छिपकली से डरता है, छिपकली चूहे से डरती है, चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता आदमी से डरता है, आदमी बीवी से डरता है। चक्र खत्म नहीं हुआ, और वो बीवी कॉकरोच से डरती है। तो जैसे हमने सुना कि मनुष्य से शुरुआत होकर अंत मनुष्य में ही हो रहा है वो चक्र, उसी प्रकार से कॉकरोच से शुरुआत होकर गृहस्थी का चक्र। तो भगवान अब काल चक्र, पिछली बार हमने बहुत से चक्र समझे, अलग अलग प्रकार के चक्र जो शास्त्रों में बताए गए हैं, और पिछले श्लोक में भगवान ने ये जो सृष्टि चक्र है और काल चक्र, इन दोनों के विषय में बताते हुए भगवान ने कहा कि अघायुर इंद्रियारामो, कि जो केवल इंद्रियों में ही संतुष्टि प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है, केवल इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए जी रहा है, वो है इंद्रिय आराम या इंद्रियारामो, इंद्रियों में आराम ढूंढ रहा है। अब भगवान आज के श्लोक में उसके ठीक विपरीत कौन है? आत्मारामो, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि कौन है जिसे कि छूट दी गई है, कि जो उसके जो कुछ निर्धारित कर्म होंगे उसके विषय में छूट किसको दी गई है? जो कि आत्मा में तृप्त है, आत्मा में रति लेता है और आत्मा में संतुष्ट है। अर्थात एक शब्द में भगवान कह रहे हैं, जो आत्मा राम है वो व्यक्ति सभी कर्तव्यों से, करणीय कर्मों से परे हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कर्म नहीं करता, परंतु वो उसके ऊपर उठ जाता है। तो अनुवाद इस प्रकार से है, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं होता। अपने में ही संतुष्ट रहने का अर्थ ये नहीं कि अपने इंद्रियों में ही संतुष्ट रहता हो। बहुत से लोग इसका दूसरा तर्क लगा सकते, नहीं, अपने में ही संतुष्ट रहने का अर्थ है आत्मा में संतुष्ट रहना, यह उसका अर्थ है। तो हम देखें 3.16 में इंद्रिया रामों के विषय में भगवान ने बताया, और 3.17 आज का जो श्लोक आत्मा राम के विषय में। तो इंद्रिय रामों की व्याख्या हमने की थी, जो इंद्रिय में आराम ढूंढता है, ज्ञानेंद्रियों में प्रसन्नता ढूंढता है, इसलिए इंद्रियों के सुख में जो प्रसन्नता ढूंढता है वो है इंद्रिया राम। इसका अर्थ ये नहीं कि जो आत्मा राम है वो जब किसी इंद्रिय के कार्य में लगता है तो उसको उसमें आनंद प्राप्त नहीं होता, होता है, परंतु आत्मा राम उस क्षणिक इंद्रिय सुख को सर्वोच्च सुख नहीं मानता। परंतु इंद्रिया रामो कौन है कि उस क्षणिक इंद्रिय सुख को वो सर्वोच्च मान लेता है कि इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। तो अब यदि उसी प्रकार से हम आत्मा रामो इस शब्द को समझें आज के श्लोक के अनुसार, तो अध्यात्म में जो प्रसन्नता लेता है और अध्यात्म से संबंधित जो कुछ अनुकूल वस्तु है या व्यक्ति है या स्थिति है उसमें प्रसन्नता वो लेता है, और इसके ठीक विपरीत इंद्रियारामो वो कहां प्रसन्नता लेता है, जो भी व्यक्ति या कोई वस्तु या स्थिति जहां उसकी इंद्रियों को वो इमीडिएट तात्कालिक सुख मिल जाए बस उसमें वो आनंद लेता है। तो अब अगर हम ये दोनों श्लोक लें 3.16 और 17, तो इनमें ये बताया गया है, और श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है इन दोनों श्लोकों का, उसका निष्कर्ष ये है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो 3.16 में इंद्रिया रामो व्यक्ति है एकदम तुरंत जो मिल जाए उसको, उसको इसलिए सुख कहा गया है, और जो आत्मा में आनंद लेता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद, ये आत्मा का स्वरूप है, इसलिए आनंद शब्द इस्तेमाल किया है आत्मा के विषय में, सुख ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया आत्मा के विषय में, सुख हर समय इंद्रियों के विषय में इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम उदाहरण दे रहे थे कि जब कोई हमें गुदगुली करता है तो हमें हंसी आती है, तो वो जो गुदगुली की हंसी है वो क्षणिक है और उसे सुख कहा जाता है, परंतु जो अंदर से व्यक्ति संतुष्ट, संतुष्टि प्राप्त करने के पश्चात, तृप्ति प्राप्त करने के पश्चात, रति भगवान के प्रति वो प्राप्त करने के पश्चात जब उसे आनंद होता है या प्रसन्नता होती है, वो तात्कालिक नहीं है, वो इमीडिएट प्लेजर नहीं। इसलिए आप देखो अधिकांश इस भौतिक संसार में जब भी आत्मा राम ये विषय आता है तो लोगों के मन में कुछ इतना उत्साह नहीं रहता, क्यों, क्योंकि इमीडिएट प्लेजर नहीं मिल रहा ना उसके अंदर, इसलिए इमीडिएट प्लेजर जहां मिलता है उसके प्रति जीव बहुत इमीडिएटली आकृष्ट हो जाता है सब कुछ। और आजकल जो जीवन शैली लोगों की है कि सब कुछ इंस्टेंट 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 इंस्टेंट, और उसके वजह से तकलीफें भी बहुत होती हैं, क्योंकि भौतिक संसार इस प्रकार का बनाया गया है कि जो इंस्टेंटली हमें मिल जाए वो इंस्टेंटली चला भी जाता है, ध्यान में रखना, जो इंस्टेंटली प्राप्त हो जाता है वो इंस्टेंटली चला भी जाता है। परंतु भ्रम में इंद्रिया रामो क्या सोचता है कि इंस्टेंटली जो मुझे प्राप्त हुआ है वो परमानेंटली मेरे पास रहेगा, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। और आत्माराम कौन है, जो जानता है कि जो इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है वो इंस्टेंटली जाएगा भी, केवल इतने सोच में अंतर है दोनों की। अब एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे। जैसे यहां पर क्या देख रहे हैं आप, आम के छिलके, पके हुए आम के छिलके। तो ये जो आम के छिलके हैं या किसी भी आप फल के छिलके लो, तो उसकी तुलना ये हमारे भौतिक शरीर से की गई है, क्योंकि भौतिक शरीर में से जो सुख मिलता है वो कितना सुख है, ये नहीं कि सुख नहीं है, सुख है। जब भी हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के विषय वस्तु के संपर्क में आती हैं, जब आंखें कुछ सुंदर वस्तु को देखती है, जिह्वा जब चखती है, कान जब श्रवण करते हैं, ये सारी जो इंद्रियां जब उनके ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में आती हैं तो अवश्य ही उस समय कुछ सुख प्राप्त होता है। लेकिन वो किस प्रकार का है, जैसे हम सब ने आम खाया है, कितनी दफा खाया होगा, और आप देखो आम को जब आप छीलते हो तो जो छिला हुआ आम है, जो उसके छिलके हैं, उसके अंदर भी आम का थोड़ा सा रस आ जाता है ना, आम का रस आ जाता है उसके अंदर भी, और कई बार हम उसको भी चाट पहुंच के उसको भी खाते हैं, पहले उसको खाते हैं बाद में उसको देखते हैं, इसको तो फेंकना है तो पहले इसके अंदर जितना भी एक बूंद भी नहीं रह जाए अंदर, तो उसको भी हम लोग पूरा ले लेते हैं। तो उसके अंदर कितना रस मिलेगा आपको, और इसके विपरीत जो आत्मा है उसकी तुलना की गई है कि अंदर जो रसीला आम है, जो पल्प मैंगो का जो एक्चुअल पल्प है वो है आत्मा। तो अब बुद्धिमान व्यक्ति वो अपना केंद्र कहां लगाएगा, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आम खाने जा रहा है तो अपना ज्यादा टाइम कहां बिताएगा, छिलके में ना, नहीं, आप आम में खो मत जाइए, उदाहरण केवल आम का है। कई बार क्या होता है उदाहरण ऐसा रसीला उदाहरण आ जाता है तो हम खो जाते हैं, उसका जो पॉइंट है वो समझिए। तो अब ये भौतिक शरीर के अंदर भी क्षमता है हमको सुख देने की, जैसे कि आम के छिलके में भी क्षमता है थोड़ा बहुत रस टपकाने की। परंतु यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आम का जो पल्प है उसके अंदर जो मिठास क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज, अब देखो अगर आम के छिलके का उदाहरण ले तो कई बार लोग दांतों में एकदम रगड़ रगड़ के निकाल लेते हैं, उसको निकलता है उसमें से कुछ तो रस निकलता है, लेकिन परिणाम क्या होता है, सब अटक जाते हैं उसके अंदर वो, और फिर बाद में आधा समय से भी ज्यादा वो निकालने में लगता है, फिर ये टूथपिक लाओ, फिर पिन लाओ, ये लाओ, निकालो, सब अटक गया यहां। तो ये सब उदाहरण को थोड़ा विस्तार से हम इसलिए बता रहे हैं कि जो इंद्रिय सुख है वो इंद्रिय सुख की क्वांटिटी इतनी सी है एक तो, और वो इंद्रिय सुख को उतनी सी क्वांटिटी में भोगने के लिए जो महद कर्म लगता है, श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में एक सुंदर श्लोक में बताया गया है कि भौतिक जीव उसकी स्थिति क्या, उसकी व्यथा क्या है कि क्षुल्ल सुख के लिए महद कर्म करना पड़ रहा है उसको, छोटे से सुख के लिए महद कर्म करना पड़ रहा है। और वही जब हम आत्मा के स्तर पर आनंद अनुभव करना शुरू करते हैं तो हम वास्तविक आम अब खाना प्रारंभ किए हैं, और ये ऐसा आम है जिसके अंदर गुठली भी नहीं, केवल पल्प। सोचिए, तो अगली बार जब भी आम खाएं तो ध्यान में रखिएगा कि इंद्रिया रामो कौन है और आत्मा रामो कौन है इसके अंदर। अब इसे भी ध्यान से देखिए कि इंद्रिया रामो जो है उसको कितना सुख मिल रहा है। कि हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी हैं देवामृत स्वामी, उन्होंने एक उदाहरण दिया एक बार, बहुत अच्छा उदाहरण, कि इंद्रिया रामों को सुख जो मिलता है कितना सुख मिलता है, मतलब मात्रात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि मई का महीना रेगिस्तान में एक व्यक्ति प्यास के कारण इधर उधर दौड़ रहा है, प्यास के कारण रेगिस्तान में मई का महीना, और कहीं पानी नहीं, सब जगह वो मृग तृष्णा दिखाई देती, पानी जैसा दिखाई देता, उससे ज्यादा प्यास लगती। आपने अनुभव किया जब निर्जल फास्ट ब्रेकिंग का टाइम आ जाता और क्लोज, तब ज्यादा प्यास लगती, और वो भी जब नींबू पानी की बाल्टी आगे आ जाती तो और ज्यादा प्यास लगती। तो इसकी प्यास अब बढ़ती जा रही है, मृग तृष्णा देख रहा है, यहां वहां कहीं पानी नहीं, केवल भ्रम दिख रहा है। और अब ऐसे त्रस्त अवस्था में वो देखता है कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वाटर, कूल ड्रिंकिंग वाटर, और वो हेलीकॉप्टर को हाथ दिखाता है, वो हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है एकदम ठीक उसके सामने, और उसमें से बाहर एक व्यक्ति आता है और वो इतना बड़ा बैरल शीतल जल का बाहर निकालता है और उसमें से जल ऐसे छलक रहा है, दिख रहा है, और प्यास बढ़ रही है इसकी और अपेक्षा भी बढ़ रही। फिर वो बैरल खोलता है और अपने जेब से एक चम्मच निकालता है और बैरल में से चम्मच में कितना पानी आएगा, वो भी टेबल स्पून नहीं टी स्पून, वो निकालता, उसमें से कितना पानी उस चम्मच में आएगा, और जितना पानी उस चम्मच में आया अब वो दे नहीं रहा है। फिर दूसरे जेब से वो एक ड्रॉपर निकालता है, फिर वो चम्मच से एक ड्रॉप बूंद वो निकालता है, और फिर उसके जीभा पे वो ऐसे फ्लिक करता है बस उसकी जीभा के ऊपर, और फिर वापस से बैरल बंद करके हेलीकॉप्टर में चला जाता है। तो एग्जाम्पल दे रहे थे कि जो हमारी प्यास है उस प्यास की तुलना में माया देवी हमको, बस सोचिए आपको ऐसा चाय का प्याला कोई दे पीने के लिए इतनी चाय, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा इससे अच्छा चाय मत पियो, इससे अच्छा क्यों इस इंद्रिय भोग में लगना है, इट्स नॉट वर्थ इट। एक और उदाहरण, टाइम है प्रसाद में अभी, एक और उदाहरण इंद्रिया रामो का है। माया देवी ऑफर्स इंद्रिया रामो विथ अ वेरी वेरी टेस्टी सक्यूलेंट समोसा। अब जैसे मान लीजिए कि भारत में जो ये समोसा है, ये आप कहीं पर भी जाओ, चाहे आप साउथ में जाओ, वेस्ट में जाओ, ईस्ट में जाओ, नॉर्थ में जाओ, इंडिया के सब जगह पर अपने अपने वर्जन्स के समोसे मिलते रहे। तो अब एक बहुत ही फेमस डेलिकेसी, आपको बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा, तो अब किसी व्यक्ति को ये बहुत अच्छा लगता है, तो माया देवी क्या है कि समोसे को इस प्रकार से प्रेजेंट करती है कि इसके अलावा आपको कुछ भी संतुष्ट नहीं करेगा। तो फिर वो व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए हो जाता है। तो मान लीजिए कि कोई किसी मिठाई की दुकान में गया, सागर सम्राट, पता नहीं उधर मिलता है कि नहीं, मिलता होगा शायद। तो वहां पर सम्राट साइज का समोसा आपको प्लेट में दिया। और कई बार क्या होता है कि कई ऐसे होटल में ना बिल भी प्लेट के नीचे अटका के देते थे साथ में। तो आप समोसा अब खाने वाले हो और आपने देखा प्लेट के नीचे बिल जो है वो इतना है, एक करोड़ रुपया। तो अब प्रश्न है कि वो समोसा आपको कितना अच्छा लगेगा बिल देखने के बाद। बिल देखने के पहले समोसा ही सर्वोच्च सुख लग रहा था, अब बिल देखने के बाद नहीं बाबा, समोसा अच्छा है लेकिन एक करोड़ देने के लायक नहीं है। तो जो आत्मा रामो है वो समोसा अच्छा है इसको नकार नहीं रहा, ये नहीं कह रहा है कि ये समोसा खाने लायक नहीं, अच्छा नहीं, नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन एक करोड़ इसके लिए आप खर्च करो ये मूर्खता है। तो क्या समझ में आ रहा है कि इंद्रिया रामो कौन है जो उस छोटे से एक समोसे के लिए अपना पूरा जो भी धन राशि है वो उसमें दे देता है। तो वैसे ही जो क्षणिक क्षुल्ल सुख के लिए कितने सारे अपने जन्म, मनुष्य जन्म गंवा देता है, जो कि यहां पर तो एक करोड़ की रकम बताई गई है, ये मनुष्य जन्म इसे तो प्राइसलेस, अमूल्य बताया गया है कि इसे केवल क्षुल्ल सुख में व्यतीत कर देना ये परम मूर्खता है। सो अ पर्सन हु टेक्स प्लेजर इन द आत्मा, आप देखिए कि भगवत गीता का जो सिद्धांत है वो कितना बैलेंस्ड है और प्लस कितना इंटेलिजेंट है कि भगवान बोल रहे हैं अ पर्सन हु इज आत्मा रामो ही डजंट डिनाय द प्लेजर ऑफ द मटीरियल बॉडी, ही डजंट से दैट द प्लेजर ऑफ मटीरियल बॉडी इज फॉल्स, नो, बट टू थिंक दैट दिस इज द अल्टीमेट प्लेजर, दैट कंसेप्शन इज फॉल्स, एंड टू स्लॉग हार्ड एंड वर्क हार्ड जस्ट टू गेट दैट ट्रांजिएंट टेम्पररी प्लेजर, दैट इज नॉट वर्थ इट। हालांकि बहुत बेसिक सिद्धांत है, लेकिन अगली बार से जब भी समोसा आप खाएं, आम खाएं, इसलिए ये सब एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे भगवद गीता के सिद्धांत को याद रखते रहें। तो यहां पर यदि हम समझें कि इंद्रिया रामो और आत्मा रामो ये दोनों के विषय में क्या अंतर है, तो हमारे सबके शरीर में, चाहे वो हमारा स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, हमारे अंदर जिसको कहते हैं स्टिमुलस, स्टिमुलस का अर्थ है वेग, हमारे अंदर कुछ वेग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं छह प्रकार के वेग, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा उदर उपस्थ वेगम, तो अलग अलग प्रकार के वेग हैं। तो ये जब भी हमारे अंदर ऐसे वेग उत्पन्न होते हैं तो तुरंत हम रिस्पॉन्ड करते हैं या हम रिस्पॉन्स चाहते हैं। अब यदि हम ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की जो जगह है, वो जो गैप है, मतलब हमारे अंदर कुछ वेग उत्पन्न हुआ, मान लीजिए कि आपने कोई बहुत ही सुंदर एक दृश्य देखा तो आपके अंदर एक वेग उत्पन्न हुआ कि मुझे प्राप्त करना है। मान लो कि आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, एक सेलफोन का मॉडल नया कोई आया, आपको बहुत अच्छा लगा और तुरंत अब रिस्पॉन्स मुझे चाहिए मुझे चाहिए। अब उसके बीच में आपका एक फ्री विल है कि आप इतना पैसा खर्चा करो या न करो, है कि नहीं। तो ये जो जितने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, ये लोग करते क्या हैं, ये हमारे स्टिमुलस को तुरंत रिस्पॉन्सिव बनाने में लगे हुए हैं कि कैसे हमारे अंदर वेग पैदा करें। कई बार तो वेग होता भी नहीं है कि ये मार्केटिंग के लोग वेग पैदा करते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि बैठे हो अभी तक, दूसरे ने ले लिया, आप क्या कर रहे हो, वो भी पड़ोसी ने ले लिया, तो तुरंत वो हमारा रिस्पॉन्स और ज्यादा एग्रेवेट हो जाता। तो इसके बीच में जो फ्री विल है, ये जो गैप है, ये डिसाइड करता है कि हम इंद्रिय रामो बने कि आत्मा रामो बने। इसलिए हर समय देखो, आप स्टिमुलस को मार नहीं सकते, वो जो वेग है अंदर उसको हम, क्योंकि वो प्राकृतिक है, इट्स नेचुरल, उसको हम मार नहीं सकते, और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो भी प्राकृतिक है, लेकिन बीच में जो फ्री विल है वो हमारे हाथ में। इसलिए उसको क्या कहा गया है, स्वतंत्रता रत्न। ये स्वतंत्रता का रत्न है हमारे पास, इसको हम कैसे यूज करें हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये ध्यान में रखना है कि आत्माराम और इंद्रियराम, इन दोनों के अंदर डिफरेंस यहां भगवान बता रहे हैं, किसका, फ्री विल, और यूजिंग फ्री विल, मिस यूजिंग फ्री विल। तो फिर से अगर हम स्टिमुलस को लें, तो हमारे अंदर ये जो वेग है ये कुछ इंडिकेटर्स प्रोवाइड करता है हमारे शरीर के लिए और मन के लिए, और उसके साथ साथ ये वेग या स्टिमुलस हमारे अंदर मोटिवेटर्स को भी प्रोवाइड करता है। अब दोनों में अंतर क्या है अगर हम देखें, तो कुछ हमारे शारीरिक फिजिकल इंडिकेटर्स हैं, और ये अलग अलग प्रकार के वेग हैं, जैसे हम स्टिमुलस का अनुवाद वेग से किए हैं। तो ये फिजिकल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि छींक आना, अचानक कुछ वेग आया हमारे अंदर और छींक आती है हमें, तो कुछ छींक कब आती है, जैसे मान लीजिए हमारे नाक में कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट चला गया, तो फॉरेन ऑब्जेक्ट जाते ही हमारा जो स्टिमुलस है वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, छींकते हैं, बाकी सारी चीजें, लेक्चर चालू होते ही स्टिमुलस आ जाता है, उससे पहले बिल्कुल नींद विंद कहा नहीं है, कोई जमहाई उभासी कोई नहीं ले रहा था, जैसे ही लेक्चर चालू हुआ तो अंदर से वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं फिर, और बाकी सारी चीजें, स्क्रैचिंग, कफिंग, इवैक्यूएटिंग, ये सब हमारे अंदर वेग हैं और हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उन वेगों को। अब ये बहुत शारीरिक स्तर पर है, लेकिन भगवद गीता हमें उस शारीरिक स्तर से अब मानसिक स्तर पर लेके जाती है कि हमारे मन में भी अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस हैं, हम क्या सोचें क्या नहीं सोचें और फिर हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें, ये सब, ये जो शास्त्र की विधि है, ये संस्कृति, वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है हाउ टू प्रॉपरली यूज योर स्टिमुलस। बस अब यहां पर देखिए, शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है जानवरों का, कि जो जानवर हैं वो केवल अपने वेग के ऊपर कार्य करते हैं, उनके अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है ये देखने के लिए कि अगर मैं इस तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगा तो मैं मरूंगा। जैसे यहां पर मछली का उदाहरण दिया गया, ब्लाइंडेड बाय द टेम्पटेशन ऑफ द वर्म विच इज ऑन द हुक, तो उस मछली को दिखाई नहीं दे रहा है, उसको खाली क्या दिखाई दे रहा है कि मेरे खाने का पदार्थ है यहां पे, लेकिन और तुरंत रिस्पॉन्ड वो मछली कर देती है कि खाने के लिए जा रही है, और फिर बाद में पकड़ी जाती है। अब जानवरों में ये सारे जो उदाहरण दिए गए हैं, पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग, एक श्लोक है गरुड़ पुराण का, मीन, हता, पंच भीरे व पंच, ये पांच प्राणी कैसे जब अपने इंद्रियों में आराम ढूंढने के लिए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, अपना शरीर खो बैठते हैं। और फिर मनुष्य के विषय में बताया गया है कि कैसे मनुष्य भी जब ऐसे ही केवल अपने इंद्रियों के आराम के पीछे, प्रसन्नता के पीछे लगे रहते हैं और भूल जाते हैं कि हरेक इंद्रिय आराम के पीछे एक कांटा है। बिहाइंड एवरी मटीरियल टेम्पटेशन देर इज अ हुक विच वी गेट हुक्ड टू। तो अब इसके संदर्भ में आपको हम एक छोटी सी एक कार्टून दिखाएंगे। हमने पिछले प्रेरणा में ये कार्टून दिखाया तो बहुत से भक्त इसके बारे में सुने, कहे कि वेडनेसडे को भी दिखाइए। तो ठीक है, मैंने देखा श्लोक भी कुछ कनेक्टेड ही है। आपको याद होगा पिछले बुधवार को ही हमने नीति शास्त्र की एक पहेली आपके सामने प्रस्तुत की थी, याद है पहेली, एक महाभारत से और एक नीति शास्त्र से, आशानाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला या बद्धा प्रधावंती मुक्त तिष्ठंत पंगुवत, कि एक व्यक्ति जो बंधा हुआ है भागते हुए दिख रहा है और दूसरा व्यक्ति मुक्त है लेकिन एक जगह पर बैठा हुआ। तो जो मुक्त एक जगह पर बैठा है वो है आत्माराम, और जो बद्ध यहां वहां भाग रहा है वो कौन है, इंद्रियाराम। तो यहां पर लाइट्स अगर कोई बंद करे तो इंद्रियाराम कौन है जो यहां वहां भाग रहा है। तो फिर से हम अनुरोध करेंगे कि आज के लेक्चर के मुद्दे को पकड़ के रखिए, कार्टून में मत खो जाइएगा। ऑल अट्रैक्टिव, जैसे हिंदी में एक और या संस्कृत में एक और शब्द है अट्रैक्शन के विषय में, आकर्षण। और आकर्षण ये जो शब्द है ये मूल शब्द कर्षति या कृष्ण से आया है, आकर्षति, कर्षति नहीं आकर्षति। तो कृष्ण जो कि सर्व आकर्षति इति कृष्ण, वहां से आया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति को आकर्षित होना है किसी से तो केवल भगवान श्री कृष्ण से ही पूर्णतया वो आकर्षित हो सकता है। तृप्ति, सैटिस्फैक्शन, उस आकर्षण के पश्चात ही आत्मा तृप्त हो पाएगा और अंततः उसकी जो तृप्ति है उसका अंतिम लक्षण क्या है, दैट पर्सन इज सैटिस्फाइड इन एनी सिचुएशन, एनी मटीरियल सिचुएशन, एनी मटीरियल सिचुएशन। क्योंकि अंदर से उसको वो आकर्षण और तृप्ति प्राप्त हो गई है तो चाहे बाहरी कोई भी स्थिति हो, जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज अकेले हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु के जितने पार्षद, दैत्य, राक्षस, उनके बीच अकेले एक शुद्ध भक्त। तो बाहरी स्थिति प्रहलाद महाराज को बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं दे सकी क्योंकि अंदर से आत्मतृप्त आत्मरति उनके अंदर थी। और जब भी हम देखें कि हम बाहरी स्थिति से अफेक्ट हो रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये ऊपर की दो चीजें नहीं हो रही हैं बराबर। हाँ, भगवान के प्रति थोड़ा बहुत आकर्षण होगा। हम देखते हैं कि भारत में भगवान श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा बहुत आकर्षण होता है, परंतु थोड़ा बहुत आकर्षण बाहर भी होता है। तो होता क्या है कि वो कॉम्बिनेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया था, स्वीट राइस मिक्स्ड विथ सैंड। ये दोनों तरफ जो आकर्षण होता है, इसका उदाहरण है खीर जिसके अंदर रेती डाल दी। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि आपको खीर दिए खाने के लिए, उसके अंदर रेती मिलाकर, तो आपको दूर से दिखता है चॉकलेटी फ्लेवर दिख रहा होगा, और खाने जाओ तो मिठास आएगी उसके अंदर, लेकिन उसके साथ वो रेती के कण, कैसा लगेगा वो खाना। तो प्रभुपाद ने बहुत सही उदाहरण दिया दैट मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन वाइल ट्राइंग टू ऑल्सो परस्यू कृष्ण कॉन्शियसनेस इज लाइक ट्राइंग टू मिक्स सैंड इन स्वीट राइस एंड एंजॉय दैट एंड थिंक दैट यू विल एंजॉय बोथ। ना तो आप रेती, उसमें क्या एंजॉयमेंट है, फिर भी अगर कहें तो रेती को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे और स्वीट राइस को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो ये जो तीन लक्षण आज के बताए हैं। अब जो आत्माराम है, अगर हम जो पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, बार्टर सिस्टम का अर्थ क्या है कि आप लोग जानते हैं बार्टर सिस्टम, तो आत्माराम के विषय में बताया गया है कि ही डज द ट्रांसेंडेंटल बार्टर सिस्टम। कैसे? ही यूजेस हिज पायटी, हिज प्रीवियस पायटी टू अचीव द सुप्रीम पायटी ऑफ कृष्ण भक्ति। और जो इंद्रिय रामो हैं, उसको इंद्रिय भोग मिल रहा है क्योंकि पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा उसने, बट वो उसको गंवा देता है। जैसे कि हमने उदाहरण पिछली बार दिया था कि स्वर्ग में कोई जाता है तो वहां स्वर्ग में जाते ही उसका पुण्य सब कट होना शुरू हो जाता है। एक एक वहां पे छोटा भी भोग कर ले, वो एक फूल को सूंघ भी ले, उसका एक पुण्य चला गया। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि एक भक्त का दृष्टिकोण क्या है। एक भक्त के जीवन में जब कुछ आपत्ति आती है तो वो प्रसन्न होता है। आपत्ति आती तो प्रसन्न होता है, क्यों? क्योंकि आपत्ति क्यों आई है, कुछ पिछला पाप होगा। तो अभी आपत्ति भोग लूं या जो भी उसको महसूस अनुभव कर लूं तो जो पिछला पाप है वो एक राइट ऑफ हो गया, और अभी कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो डर जाता है कि अभी पुण्य कट हो रहा है पीछे से सब। ये दृष्टिकोण देखिए, इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल बार्टर सिस्टम, कि एक आत्माराम अपने जितने अलग अलग पुण्य हैं उन पुण्यों को, मतलब ये कह सकते हैं कि वो जो आत्माराम है, ही बाइज डायमंड्स बाय गिविंग ग्लासेस, ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास। सोचो कि पुण्य जो है वो क्या है, जिस ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, उसको देख के हीरे खरीद रहा है। और इंद्रिय रामो कौन है, बिल्कुल उल्टा, ही इज गिविंग अवे डायमंड्स टू गेट ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास। जैसे बैंक में कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो बैंक में जब वो कुछ फिक्स डिपॉजिट करता है तो क्या उद्देश्य रहता है, कि उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे एक हमारे संता जी गए बैंक में, तो कैशियर ने बोला, फटा हुआ नोट है संता जी, बोला ओए तेरे को क्या प्रॉब्लम, मेरे अकाउंट में डाल रहा हूं। तो अब देखिए, मैं इसके विषय में सोच रहा था कि आप चाहे फटा हुआ नोट डालो, आपके अकाउंट में डालो, जब विड्रॉ करोगे तो एकदम करारा नोट मिलता है ना। तो उन्होंने भी सही कहा, खोत्या दे पुत्र, अपने ही तो अकाउंट में डाल रहा हूं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो आत्माराम कौन है? आत्माराम वो है कि वो जानता है कि इस भौतिक संसार में मेरा जो शरीर है, जो कुछ है, वो सब फटे हुए नोट के समान है। लेकिन वो ऐसे बैंक में अकाउंट खोलता है कि फटा हुआ नोट डालकर जब विड्रॉ करता है तो एकदम करारे नोट बाहर आते हैं। और जो इंद्रिया रामो है, वो करारे नोट ऐसे बैंक में डिपॉजिट कर रहा है कि उसमें से पता नहीं नोट के कितने टुकड़े बाहर आएंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, आजकल लोग कितना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, यहां करो वहां करो, इन्वेस्ट करते रहो, तो एक आत्माराम व्यक्ति वो सबसे ज्यादा बड़ा बुद्धिमान इन्वेस्टर है। अब इसके संदर्भ में एक छोटी सी कथा है, द स्टोरी ऑफ डेजोलेट आइलैंड। ये कथा इस प्रकार से है कि एक बार एक व्यक्ति वो अपने व्यापार से वापस लौट रहा था, मतलब खरीदारी कर अपने घर जा रहा था, और बड़े नाव में उसने जो कुछ खरीदा था व्यापार करने के लिए वो सब सामग्री अपनी नाव में उसने रखी थी। अचानक तूफान आया, नाव डूबने लगी और ये इसका सारा सामान डूब गया, नाव भी चली गई, ये भी गिर गया नाव से। इसको तैरना आता था तो ये कैसे तो तैर तैर कर उस सरोवर के तट तक पहुंचा, और जैसे वो निकला बाहर उस सरोवर से तो उसने देखा कि तट पर बहुत से लोग मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और सभी चिल्लाने लगे, हमारे नए राजा की जय हो, हमारे नए राजा की जय हो। ये पीछे मुड़ के देखा, भैया किसको राजा बोल रहे हैं, तो ये अकेला था, पीछे तो कोई था नहीं। और तुरंत फिर पालकी आ गई और चार लोग इसको उठा के पालकी में डाले और फिर जय राजा की जय हो, नए राजा की जय हो, और इसको लेके जा रहे हैं। अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छा पालकी में बिठा रहे हैं, अच्छी बात है राजा बोल रहे हैं, लेकिन माजरा क्या है। और फिर ले जाके उसका राज्याभिषेक कर दिया, सिंहासन पर बिठाकर, आप हमारे नए राजा। तब इसने सोचा भाई बाद में सब पूछेंगे, फिलहाल तो सब अच्छा चल रहा है, अभी तक तो गुड न्यूज ही है, सब राजा बोल रहे हैं, सिंहासन पर राज्याभिषेक कर दिया, अच्छे कपड़े पहना दिए, फिर सब कुछ हो गया। तो फिर उस दिन के अंत उसने देखा कि अभी राजा है तो फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, सेनापति सब वहां पर, तो मुख्यमंत्री को बुलाता है, पूछता है कि बताओ ये माजरा क्या है, क्या चल रहा है, सुबह से क्या हो रहा है, आप लोग मुझे क्यों राजा बनाए भाई, आप लोग कैसे मुझे जानते हैं। तो फिर उसने कहा कि देखो भाई, ये गांव, ये जो हमारा राज्य है, इस राज्य के विषय में एक भविष्यवाणी की गई थी कि हर समय 2-3 साल बाद आपका जो नया राजा होगा, आप जहां से आए ना, जिस सरोवर के तट से, उस सरोवर के तट से नया राजा आएगा, ये भविष्यवाणी हमारे राज्य के विषय में कही थी। तो अब इसने पूछा कि तो फिर मेरे पहले कौन था, अब मैं आया हूं मतलब मेरे पहले भी कोई होगा ना, तो मेरे पहले कौन था। तो उसने कहा कि आपके पहले जो था उसको कल ही हमने ये जो डेजोलेट आइलैंड है यहां फेंक दिया। मतलब वहां पर क्या है, वहां पर जंगली जानवर, सब प्रकार के भूत पिशाच, ये सब बहुत भयानक जगह है वो। तो जो भी नया राजा सरोवर के इस तट से आता है उसको हम 1 साल के लिए राजा बना के रखते हैं और 1 साल के बाद उसको यहां फेंक देते हैं, वेलकम। तो अब ये, अब सोचो कि ये जब उसको सुनाई दिया, सब ऐसे किया है, तो अब ये कथा इस प्रकार की है कि ये व्यक्ति आत्माराम था, या आत्माराम की जो व्याख्या आज भगवान कर रहे हैं ये उस प्रकार का था। तो इसने क्या किया, इसने तुरंत मुख्यमंत्री को बुलाया दूसरे दिन, उसने कहा कि देखो अब 1 साल के लिए तो मैं राजा हूं ना, हाँ 1 साल के लिए आप राजा, और आप लोग सब मेरे आदेश का पालन करोगे ना, हाँ। तो मैं तुरंत अभी आपको आदेश देता हूं, जितना जितनी सेना है, जितना धन है मेरे अंडर, अब वो सारा धन, सारा मैन पावर, सारी सेना लगाओ और वो जो आइलैंड है ना, डेजोलेट आइलैंड, उसको जाके खुशहाल बनाओ। तो अभी आदेश राजा ने दिया, ये प्रेजेंट राजा ये, एक्टिव राजा ये, तो आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। तो वो लोग सब लग गए, पूरा 1 साल उनको लगा उस डेजोलेट आइलैंड को एकदम खुशहाल राज्य बनाने में। और जब 1 साल आया इनके प्रथा के अनुसार, अब इस राजा को वहां फेंकना है, तो ये खंडर बन गया, क्योंकि 1 साल तक राजा ने सब कुछ वहां इन्वेस्ट किया और फिर एक साल बाद वो जो गया वहां पर, ही हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर जो बोलते हैं, और इसके पहले तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा चतुर आप ही निकले, क्योंकि इससे पहले जितने राजा बने उन्होंने ठीक उल्टा किया। क्या किया? एक साल बचा है खाली, चलो जितना पैसा है, धन है, जितना ऐश्वर्य है, सब लगाओ, मेरे को भोगने दो सब। तो पिछले जो राजा थे उन्होंने किया क्या कि वो एक साल में उनको, उनके मन में क्या आया कि जितना भोगना है भोग लो, क्योंकि एक साल के बाद तो वहां पे फेंका जाऊंगा मैं। तो ये डिफरेंस है इंद्रिया रामों में और आत्मा रामों में। इंद्रिया रामो क्या सोचता है, चार जिंदगी जिंदगी है, ऐश कर प्यारे, बोलता ऐसे बोलते ना, चार दिन की जिंदगी है, ऐश कर प्यारे, क्योंकि ऐश तो बनना है बाद में, शरीर भस्म हो के ऐश तो बनेगा ही। यावत जीवे सुखम जीवे भस्मी भूतस्य देहस्य कुत पुनः आगमन भवेत, ये सब कुछ जो चार वाक फिलोसफी। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहां पर इन्वेस्ट करता है वो देखता है, वो इमीडिएट प्लेजर्स में नहीं जाता है, वो आगे की सोचता, बोलते हैं आगे की सोच, तो आगे की वो सोचता है। तो ये जो छोटी सी कथा है इसमें समझ में आता है कि इंद्रिया रामो और आत्मा रामो में अंतर क्या है। तो एक बड़े फिलोसोफर से पूछा गया कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, तो उन्होंने कहा सीक्रेट ऑफ सक्सेस सिंपली टेकिंग राइट डिसीजंस। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या उन्होंने बताया, सिंपली टेकिंग राइट डिसीजंस। तो उनको पूछा गया अगला क्वेश्चन, ओके हाउ टू टेक राइट डिसीजंस, तो उन्होंने कहा राइट डिसीजंस आई टेक बिकॉज ऑफ माय प्रीवियस एक्सपीरियंस। फिर उनको आगे पूछा गया हाउ डू यू हैव एक्सपीरियंस विथ विच यू टेक राइट डिसीजंस, फिर उन्होंने कहा रॉन्ग डिसीजंस, कि रॉन्ग डिसीजन से हमको एक एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस से हमको क्या सिखाया जाता है संसार में, हाउ टू टेक राइट डिसीजंस। और इंद्रिया रामो कौन है, रॉन्ग डिसीजंस की वजह से जो एक्सपीरियंस मिला है फिर रॉन्ग डिसीजन लेता है। तो उसमें फिर वो उस चक्र में फंसता जाता है जो काल चक्र की चर्चा हमने पिछली बार की। तो और आत्मा रामो कौन है कि वो इस भौतिक संसार में जानता है कि कौन से अच्छे अनुभव है और बुरे अनुभव है। जस्ट लाइक एन एक्सपर्ट बिजनेसमैन, ही नोज वेदर द मार्केट इज डाउन और हाई, ही नोज हाउ टू मेक मनी, ही इज नॉट अफेक्टेड सो मच बाय द अप एंड डाउन ग्राफ ऑफ द मार्केट इफ इज रियली इंटेलिजेंट। अब जब हमने ये देखा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, तो उसके संदर्भ में अब यहां पर आप देखिए कि एक्सपेक्टेशंस होते हैं एक आत्माराम के भी और एक इंद्रिय राम के भी, और उन एक्सपेक्टेशंस के साथ एक रियलिटी होते इस वर्ल्ड की। जैसे कि किसी को एक्सपेक्टेशन है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसको एक्सपेक्टेशन है कि मैं डॉक्टर बनूं। अब वो डॉक्टर बनने का जो इसका एक्सपेक्टेशन है और उसके बीच में जो रियलिटी है, अगर वो उसको भूल जाए, रियलिटी क्या है कि डॉक्टर बनने के लिए भाई सबसे पहले तुमको इतने परसेंटेज मार्क्स ट्वेल्थ में कमाने होंगे और फिर एंट्रेंस एग्जाम में पास होना होगा, जो भी डोनेशन देना होगा ऊपर से नीचे से जहां से भी, तो वो सब कुछ करना होगा। और उसके बाद में ऐसा नहीं कि एक बार कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में आपको एंट्रेंस मिल गया तो आप डॉक्टर बन गए, या वाइट कोट पहन के उस स्टेथोस्कोप लगा दिया तो डॉक्टर हो गए, नहीं। फिर पढ़ाई करके पास होना है, पास होने के बाद फिर जो भी आप प्रैक्टिस शुरू करोगे तो उसका रियलिटी का जो फेस है वो कितना अलग है। एक्सपेक्टेशन अलग होता है, रियलिटी अलग होता है। तो होता क्या है कि जब हम रियलिटी को भूल जाते हैं और इसके बीच में का जो गैप बढ़ता है, तब स्ट्रेस, जब हम रियलिटी को भूल के खाली सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं कि एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चांदी का बंगला समुद्र के तट के पास, और बस उस कल्पना में, उसको क्या बोलते हैं, ख्वाबी पुलाव, सुना आपने, ख्वाबी पुलाव पकाते हैं, और ख्वाबी पुलाव में आप कितना भी काजू बादाम किशमिश डाल सकते हैं, लेकिन जब भूख लगेगी तो रियलिटी में कुछ नहीं सामने, वो ख्वाबी पुलाव भूख नहीं मिटाएगा। तो इसलिए जब हम इस भौतिक संसार में रह रहे हैं तो हमको समझना चाहिए दो चीजें सुखी बन रहने के लिए। फर्स्ट, यू एक्सपेक्ट लेस। इफ यू कैन नॉट डू दैट, एक्सेप्ट द रियलिटी। जैसे एक व्यक्ति, उसके ऑफिस के सामने एक भिखारी बैठा करता था, तो रोज वो जब ऑफिस में जाता उस भिखारी को 10 रुपए देता, भिक्षा में 10 रुपए देता। तो हुआ क्या कि ये व्यक्ति टूर पे निकला 7 दिन के, तो 7 दिन बाद जब आया तो भिखारी बोलता है, साहब 70 रुपए। तो बोले, किस बात के 70 रुपए? साहब 7 दिन आप नहीं थे ना, 7 दिन के 70 रुपए। फिर वो साहब को बोलता है, बहुत कुछ महीने बीते, तो बोलता है, साहब पहले आप 10 रुपए दिया करते थे, फिर अभी 5 पे आ गए, अभी 1 रुपए देते हैं। तो साहब ने बोला, देखो भाई, मैं जब 10 रुपया देता था ना, तब मैं कुंवारा था, फिर मेरी शादी हुई, फिर 5 पे आया, फिर बच्चे हुए, तब 1 रुपए। तो भिखारी भी क्या बोलता है, भिखारी बोलता है, ये तो ना इंसाफी है साहब, मेरे पैसों पे घर चला रहे हो। तो अभी देखो इसकी एक्सपेक्टेशन कि उसको भीख मिल रही है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन देखो यहां तक पहुंच गया कि उसके पैसों पे घर चल रहा है इसका। तो यदि हमें सही मायने में प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना, सो आइदर द एक्सपेक्टेशन शुड बी लेस और वी एक्सेप्ट द नेकेड रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो एक सुंदर कोट हम हमारे प्रेरणा में भी कोट कर रहे थे, रीजन फॉर आवर फेलियर्स एंड सॉरो, एक्सपेक्टिंग ऑरेंजेस व्हाइल स्टैंडिंग अंडर अ मैंगो ट्री। कि दुखालय संसार में रहते हुए हम इसको सुखालय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, टू मेक दिस दुखालय वर्ल्ड इनटू सुखालय इज एज गुड एज ट्राइंग टू मेक अ पब्लिक टॉयलेट फ्रेग्रेंट। पब्लिक टॉयलेट को कितना भी आप अगरबत्ती ये लगाओ, ओडोनिल वो सब कितना भी लगाओ, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फिल्थ, सो ऑलवेज देयर विल बी स्टिंक, एंड ट्राइंग टू कवर दैट अप इज जस्ट आर्टिफिशियल। इसलिए एक हमारे प्रचारक, मैंने सुना था वृंदावन बहुत साल पहले, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आप देखो बहुत बार जो ऐसे ऐसे देश होते हैं बहुत साफ सुथरे दिखते हैं, जैसे किसी के घर में कहीं आप देखो कि आलीशान मकान होते हैं, तो टॉयलेट वगैरह बाथरूम वगैरह वो इतने आलीशान रहते हैं कि लगता है कि यहीं घर बसा लें, इतना बड़ा तो टॉयलेट होता है, सब कुछ होता है, टीवी होता है, मैगजीन्स होते हैं अंदर, सब कुछ होता है, क्योंकि कलयुग में क्या है, टाइम बहुत लगता है अंदर भी लोगों को, तो वो एक कारण है कि ये सब सुविधाएं अंदर ही प्रदान करके देते हैं। तो ये बता रहे थे कि जैसे आप देखो किसी आलीशान घर में टॉयलेट एकदम स्पिक एंड स्पैन बोलते हैं उसको, बट व्हाट इट इज कनेक्टेड टू, इट इज कनेक्टेड टू द सेप्टिक टैंक विच यू कांट सी एंड डोंट इमेजिन। व्हाट सेप्टिक टैंक कंटेन्स. तो उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया. सिमिलरली इन कलयुगा एवरीवन ट्राइज टू बी लाइक दैट सोफिस्टिकेटेड बाथरूम टॉयलेट वेरी स्पिक एंड स्पैन बट इट्स ऑल कनेक्टेड टू द सेप्टिक टैंक इन द हार्ट. गॉट द पॉइंट? ओके. तो इसलिए अब इसका रेमेडी क्या है ये भी बताया इसके अंदर. आइदर चेंज योर एक्सपेक्टेशन और चेंज द ट्री. इफ यू आर स्टैंडिंग अंडर ऑरेंज ट्री एक्सपेक्टिंग मैंगोज टू फॉल, फूल, यू आर फूल नंबर वन. सो इफ यू वॉन्ट ऑरेंज, आइदर यू चेंज योर एक्सपेक्टेशन, स्टार्ट डिजायरिंग मैंगो इफ यू वॉन्ट टू हैप्पी, बी हैप्पी. और इफ यू वॉन्ट ऑरेंज, चेंज द ट्री एंड स्टैंड अंडर द ऑरेंज ट्री. इसलिए श्रीमद् भागवत में नारद मुनि एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं आज के श्लोक में, जो आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि के विषय में जो कहा गया. तो नारद मुनि उदाहरण देते हैं और नीति शास्त्र में भी हितोपदेश में उदाहरण है. द शू ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा उदाहरण है. मान लीजिए कि अभी जैसे आप चल के आते हैं तो बहुत से कंकड़ होते हैं पार्किंग लॉट में, वो सब जो ग्रेवल डाला हुआ है. तो अभी एक तरीका है कि आप पूरी सड़क के ऊपर एक कारपेट भिजाओ और आप नंगे पैर चलो तो आपको कंकड़ नहीं चुभेंगे. और दूसरा रेमेडी है कि कारपेट बिछाने की जरूरत नहीं है, आप खाली जूते पहन लो. तो जहां पर भी आप चलोगे आप कारपेट के ऊपर ही चल रहे हो जिसके से वो जूता बना है. सो विच इज मोर इंटेलिजेंट वे to avoid you being pricked by the gravel, just wear shoe. तो ये उदाहरण दिया है भागवत में और नीति शास्त्रों में, that if a person who is really intelligent will first earn the quality of satisfaction, because then wherever he goes he will not be affected by the temptations of this world. एंड द अदर पर्सन इंद्रिया राम, हु इज ही, वो जूते नहीं पहनेगा. नहीं, जहां पर भी जाऊंगा मैं कारपेट बिछाऊंगा, कारपेट लेके घूमता रहता है. मूर्खी है ना, कारपेट लेके घूम रहा है. जहां पर उसको बोला जूता पहन, जूता नहीं, कारपेट, मैं कारपेट पे चलूंगा, जूता होता नहीं. सो एक और उदाहरण दिया है, इफ यू वॉन्ट दिस एंटायर टेम्पल हॉल टू बी पेंटेड ब्लू, इफ यू लाइक ब्लू कलर, वन इज यू टेक पेंट एंड ब्रश स्टार्ट पेंटिंग इट ब्लू, अदर इज यू वेयर ब्लू ग्लासेस, एवरीथिंग विल बी ब्लू ऑन द वॉल, विच इज मोर इजियर, कन्वीनियंट. सो सेटिस्फैक्शन, द शू ऑफ सेटिस्फैक्शन इज दैट. इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं वेर एवर यू गो ऑलवेज पुट ऑन द शू ऑफ सेटिस्फैक्शन, देन नथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कैन अफेक्ट एंड बॉदर यू. That is the lesson of satisfaction. Now the process of bhakti is compared to the process of eating. आज बहुत से उदाहरण वैसे ही आ रहे हैं. तो 11वें स्कंद में यह सुंदर श्लोक में बताया गया है, process of bhakti compared to the process of eating. Bhakti परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुद अपायो नु अनुघासम. तो यहां पर ट्रांसलेशन है आपके सामने. डिवोशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड डिटैचमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स, दीज थ्री अकर साइमल्टेनियसली फॉर वन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. In the same way that pleasure, nourishment and relief from hunger comes simultaneously and increasingly with each bite for a person engaged in eating. Anughasam. Ek ek ghas wo jo kha raha hai, ek ek niwala wo jo le raha hai, usme teen cheeze ho rahi hai saath mein. Kaun si teen cheeze ho rahi hai? Tushti, pushti aur kshud apayu. सेटिस्फैक्शन खाते समय हम लोग ये अनुभव करते हैं, हम लोग को एक प्रकार की तृप्ति होने लगती है. और वो जो हम खा रहे हैं उसके वजह से पुष्टि हो रही है, मतलब नरिशमेंट हो रहा है, और फिर हम लोग वो खा रहे हैं, धीरे धीरे वो जो सामने रखा हुआ है उसके प्रति डिटैचमेंट भी होने लगता है। वी एक एक घास के बाद वो निवाले का क्वांटिटी कम होते जाता ना कि बढ़ते जाते, कम होते जाते। तो उसी प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है कि डिवोशन इज कंपेयर टू सेटिस्फैक्शन। व्हेन वी डू भक्ति फॉर कृष्णा वी डेवलप सेटिस्फैक्शन विच मीन्स विच इज द डिवोशन विच वी गेट डेवलप। देन वी गेट द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कृष्णा गिव्स अस द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये भी भगवद गीता में भगवान ने बताया, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस यू गेट ऑफ कृष्णाज मर्सी, एंड फाइनली यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मटीरियल थिंग, डिटैच फ्रॉम मैटर। ये तीनों चीज साइमल्टेनियसली होती। तो जैसे आज के श्लोक में तीन चीज भगवान ने बताया कि कैसे रति, तृप्ति और संतुष्टि, वैसे इस श्लोक में ये चीज बताई। अब सक्सेस और हैप्पीनेस इस भौतिक संसार में देखिए बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि मैं यदि सफल बन जाऊं तो मैं आनंदित या सुखी हो जाऊंगा, बट मेनी टाइम्स इट इज द ऑपोजिट। नॉट नेसेसरली दैट ऑलवेज व्हेन यू आर सक्सेसफुल यू विल बी हैप्पी, एंड नॉट नेसेसरली व्हेन यू आर हैप्पी यू विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन। Of course, we can discuss more about that, but just to understand the point which we are discussing using the shloka of today. तो अब हमने जो indicator और motivator की slide ली थी, जिसके अंदर जो indicators हैं हमारे, वो क्या है कि हमारे भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के विषय में indicators होते हैं। तो इंडिकेटर्स जब हम कहते हैं तो क्या इंडिकेट करते हैं कि हम सही डिसीजंस लें। इसलिए कहा गया है कि इंडिकेटर शुड बी मोटिवेटेड बाय गुड इंटेलिजेंस, अदरवाइज द सेम इंडिकेटर, डेजोलेट आइलैंड की स्टोरी ध्यान में रखना कि एक साल का समय उसके पास था, उसके ऊपर था कि वो एक साल के समय को कैसे इस्तेमाल करता है, उस डेजोलेट आइलैंड को फ्लरिशिंग किंगडम बनाए या फिर यहां पर भोग कर करके फिर एक साल बाद उधर फेंका जाए। अगेन, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। एंड एज फार एज मोटिवेटर्स आर कंसर्न, इट इज द डिवाइन हायर पावर्स विच शुड मोटिवेट अस टू प्रॉपरली यूज द इंडिकेटर्स। तो आत्माराम क्या करता है कि डिवाइन पावर से मोटिवेशन लेके इस भौतिक संसार के इंडिकेटर्स को अपने भलाई में लगाता है, द ट्रांसेंडेंटल बार्टर सिस्टम। इसलिए हमको ये प्रश्न पूछ लेना चाहिए हमसे हर समय, वेदर आई एम अ थर्मोमीटर और वेदर आई एम अ थर्मोस्टैट। ये दोनों में अंतर क्या है कि थर्मोमीटर क्या करता है, कंट्रोल्ड बाय कंडीशंस अराउंड इट, है ना, पारा ऊपर नीचे होता रहता ना, एंड थर्मोस्टैट कंट्रोल्स कंडीशंस अराउंड इट। तो थर्मोमीटर कौन है, इंद्रिय रामो, गेट्स वेरी मच एनामर्ड बाय कंडीशंस अराउंड इट, एंड थर्मोस्टैट इज आत्मा रामो, दैट ही कंट्रोल्स द सिचुएशंस अराउंड हिमसेल्फ। तो हमको भगवान यही बता रहे हैं कि कैसे हम सृष्टि चक्र का पालन करते हुए हम वो थर्मोस्टैट बने। रिवर ऑफ लाइफ इसका उदाहरण है कि दो व्यक्ति वो एक नदी के तट से चलते हुए रास्ते पे जा रहे थे, रास्ता था नदी के तट पर था, तो एक ने डिसाइड किया कि मैं नदी में कूद के नदी का आस्वादन या नदी का जो असली अनुभव है वो लूं। तो नदी में कूद जाता है, तो नदी में कूदने के पश्चात अब वो केवल लगा हुआ हाथ पैर चलाने के लिए नदी में कैसे तो अपने आप को अफ्लोट या तैरता हुआ रखने के लिए, और ये जो रास्ते पे चल रहा है ये नदी का भी अनुभव ले रहा है और नदी के तट पर जितने पेड़ हैं, पंछी हैं, आकाश है, हवा है, उनका भी अनुभव ले रहा है। तो एग्जाम्पल दिया गया है रिवर ऑफ लाइफ, जिसके अंदर देयर इज वन पर्सन हु जंप्स इनटू द रिवर थिंकिंग दैट आई विल गेट डायरेक्ट प्लेजर, एंड द अदर इज हु स्टेज आउटसाइड द रिवर एंड एंजॉयज मोर देन वन हु इज इनसाइड द रिवर। तो आत्माराम कौन है कि जो यहां से डिटैच्ड रहकर वो इस भौतिक सृष्टि को भी सही रूप से भोग सकता है। आध्यात्मिक वैकुंठ को तो भोगता ही है, बट वन हु इज टोटली डाइविंग इनसाइड द रिवर ऑफ मटीरियल लाइफ इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग जस्ट टू रिमेन अफ्लोट एंड ही हार्डली कैन एंजॉय व्हाट इज एडजॉइनिंग एंड सराउंडिंग द ब्यूटिफुल रिवर। इसलिए फाइनली जीवन के विषय में बताया गया है व्हाट लाइफ फॉर आत्माराम इज, आज के श्लोक के अनुसार लाइफ फॉर वन हु इज बियॉन्ड द टेम्पररी ट्रांजिएंट प्लेजर, हिज लाइफ इज मीनिंगफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, हिज लाइफ इज यूजफुल एंड हिज लाइफ इज जॉयफुल। दीज थ्री थिंग्स, अगर ये तीन चीजें हमारे जीवन में हो रही हैं, क्योंकि ये सच्चित आनंद का स्वरूप है, दैट इफ यू नो दैट यू आर एटर्नल दैट इज दैट विल मेक योर लाइफ मीनिंगफुल, सत फीचर। इफ यू नो दैट योर लाइफ इज यूजफुल विच मीन्स दैट इज द चित फीचर, द नॉलेज फीचर, एंड देन इफ यू कनेक्ट विथ आत्मा अध्यात्म देन यू विल बी एक्चुअली जॉयफुल। इसलिए ये जो तीन कॉम्बिनेशन हैं सच चित आनंद, ये आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये है आत्माराम का लक्षण, जो कि अपने सत फीचर या एटर्नैलिटी फीचर, नॉलेज फीचर और आनंद फीचर को सही रूप से बैलेंस करते हुए उसका अनुभव करता है। एंड देयरफॉर कृष्णा इज आस्किंग अर्जुन दैट यू बिकम नॉट जस्ट अ पर्सन हु गेट्स कैरिड अवे बाय द इमीडिएट सर्कमस्टेंस विच यू आर, अर्जुन जो अपने सगे संबंधियों को देखकर हो रहे थे। तो फाइनली आज के श्लोक का लेसन भी ये है, लाइफ इज लाइक प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस विद गॉड, अवर मूव्स आर कॉल्ड चॉइसेस, गॉड्स मूव्स आर कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। सो रिमेंबर द फ्री विल which is in between the stimulus and the response will decide that what will be our consequences. जैसे शतरंज का जो खेल होता है उसमें आप देखो, आप जो चाल चलते हो अगला व्यक्ति आपके चाल के अनुसार और चार चाल चलता है, और कई बार जो शतरंज के एकदम माने हुए खिलाड़ी होते हैं वो जानते हैं कि आप कौन सा अगले चार चार चलने वाले हो, वो जानते हैं, उसके अनुसार वो अपनी चाल चलते रहते हैं। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि भगवान जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, इसलिए हम अगर कोई ऐसी एक कदम बढ़ाएं भगवान की ओर तो भगवान 100 कदम, 1000 कदम, अनगिनत कदम हमारी ओर बढ़ाएंगे हमको इंद्रिय राम से आत्मा राम बनाने के लिए। और अब इसके पश्चात भगवान कहने वाले हैं 3.18 में कि ऐसा आत्माराम व्यक्ति वो कैसे, उसके लिए कुछ करणीय नहीं है क्योंकि वो कर्म से ऊपर उठ चुका है, परंतु फिर भी वो कर्म करने में अपना कोई स्वार्थ नहीं देखता या स्वार्थ नहीं रखता, इसलिए उसको कहते हैं निष्काम कर्म, बिना उस स्वार्थ के, बिना कामना के जो कर्म किया जाए। और जब निष्काम कर्म कोई करता है अर्थात उसके कर्म करने की प्रेरणा केवल एक ही है, वो है प्रेम। तो प्रेम के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो इस भौतिक संसार के जो बाकी कर्म हैं उनसे बहुत ऊपर के स्तर पर वो कर्म चले जाते हैं। और वो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम केवल हार जीत के कैलकुलेशन में युद्ध मत लड़ो, तुम मुझसे प्रेम करते हो और मुझे मेरी सहायता करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध लड़ो, यह है वास्तविक स्तर उस कर्म का, और इसकी व्याख्या अब 3.18 में भगवान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की।